एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा AI की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे इंसान के जीवन की गहराइयों में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही न सिर्फ संगीत और डांस बल्कि एक पहेली सी दिमाग में घूमने लगती है। हम बात करें माइकल जैक्सन की, और आज की हमारी चर्चा का आधार है जे रैंडी टैराबोरेली की लिखी हुई काफ़ी मशहूर जीवनी माइकल जैक्सन, द मैजिक द मैडनेस। ये किताब एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा जाने जाते थे, पर शायद सबसे अकेले भी।
हाँ, ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, इसे आप एक तरह से मनोरंजन जगत के सबसे बड़े और शायद सबसे रहस्यमयी सितारों में से एक का मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विश्लेषण कह सकती हैं। टैरा बोरली का जो मुख्य तर्क है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जैक्सन की वो कमाल की प्रतिभा, वो जादू जिसे उन्होंने मैजिक कहा है, और उनके अंदर के जो गहरे संघर्ष थे, वो उथल पुथल जिसे किताब मैडनेस कहती है, ये दोनों असल में अलग नहीं थे। ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक दूसरे से जुड़े हुए। आप एक के बना दूसरे को समझ ही नहीं सकते।
और यही शायद सबसे बड़ा सवाल भी है ना, कि भाई कोई इंसान जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपनी कला से इतनी खुशी दी हो, वो खुद अपनी निजी जिंदगी में इतना परेशान, इतना उलझा हुआ कैसे रह सकता है? मतलब किंग ऑफ पॉप, जिसके पास सब कुछ था, टैलेंट देखो तो मिसाल बन जाए, शोहरत जिसकी कोई हद नहीं, पैसा बेशुमार, फैंस का प्यार वो भी बहुत, फिर भी वो इंसान अंदर से इतना अकेला और असल जो मानवीय रिश्ते होते हैं उनसे कटा हुआ क्यों महसूस करता रहा? ये किताब इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करती है।
और टैरा बोरेली इसके लिए सही लेखक भी हैं। वो सिर्फ कोई बाहर के पत्रकार नहीं हैं, वो तो दशकों से जैक्सन परिवार और उनके करीबी लोगों के संपर्क में रहे हैं। उनकी पहुंच उन लोगों तक थी, परिवार के लोग, दोस्त, बिजनेस वाले लोग, इंडस्ट्री के अंदर के लोग, जिन्होंने शायद पहले कभी इतनी खुलकर बात नहीं की थी। इससे उन्हें वो बातें, वो पहलू पता चले जो आमतौर पर दिखते नहीं हैं। और उनकी कोशिश कोई सनसनी फैलाने की नहीं लगती, वो बस एक संतुलित, एक मानवीय तस्वीर पेश करना चाहते हैं जहां सच और अफवाह अलग अलग दिखें।
तो फिर चलिए शुरू करते हैं, इस असाधारण और उलझी हुई जिंदगी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि माइकल जैक्सन की कहानी सिर्फ एक पुराने सुपरस्टार की कहानी क्यों नहीं है, बल्कि आज भी हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें इंसान होने के बारे में क्या सिखा सकती है। तो कहानी शुरू होती है माइकल के बचपन से, प्रारंभिक वर्ष। गैरी इंडियाना में जन्म हुआ, एक वर्किंग क्लास अफ्रीकी अमेरिकन परिवार, माहौल बहुत पुथुन था।
लेकिन उनके पिता जो जैक्सन, उनके सपने बड़े थे, जो कि अपनी म्यूजिकल ख्वाहिशें अधूरी रह गई थीं, तो उन्होंने ठान लिया कि बेटों के जरिए उन्हें पूरा करेंगे। और उनका तरीका काफी सख्त था। जैक्सन 5 बनाने का उनका जो जुनून था, वो सिर्फ संगीत सिखाना नहीं था। किताब बताती है कि घंटों की प्रैक्टिस होती थी, अनुशासन एकदम लोहे का था, और कई बार शारीरिक सजा भी दी जाती थी बच्चों पर, और खासकर माइकल पर, जो सबसे छोटे, थोड़े शर्मीले पर शायद सबसे टैलेंटेड थे। एक भारी इमोशनल प्रेशर था। उनका बचपन असल में बचपन जैसा था ही नहीं। वो आम बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पाए, स्कूल का वो माहौल नहीं मिला। उनकी दुनिया स्टेज, रिहर्सल और पिता की उम्मीदों के बीच सिमट गई थी।
टैरा बोरेली यहाँ बहुत साफ कहते हैं कि माइकल की बात की जिंदगी की कई दिक्कतें, वो असुरक्षा, वो परफेक्शन की तलाश, और वो जो हमेशा एक खोए हुए बचपन की तलाश करते रहे, उसकी जड़ें यहीं थीं। ये वो बुनियाद थी जिस पर उनकी पूरी पर्सनैलिटी बनी। एक तरफ लाजवाब टैलेंट, दूसरी तरफ गहरे भावनात्मक जख्म। हाँ, ये सुनकर ही लगता है कि आगे का सफ़र कितना मुश्किल रहा होगा। और यहीं से शुरू होता है उनका अगला दौर, उत्थान और संघर्ष का। जैक्सन 5 ने मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ ज़बरदस्त कामयाबी पाई। वो छोटा सा माइकल देखते देखते एक प्रोफेशनल, एक मंझा हुआ कलाकार बन गया। लेकिन इस कामयाबी की भी अपनी कीमत थी। वो बहुत छोटी उम्र में ही बड़ों की दुनिया में आ गए। शो बिजनेस का दबाव, उसकी मुश्किलें, इन सब ने उनके पर्सनल डेवलपमेंट पर गहरा असर डाला।
और इसी दौरान वो अपनी अनोखी प्रतिभा को लेकर, अपनी एक अलग पहचान बनाने को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होने लगे। लेकिन टीनेज वो अपने साथ दूसरी चुनौतियां लेकर आई, आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन, अपने लुक्स को लेकर, खासकर अपनी नाक, अपनी स्किन को लेकर इनसिक्योरिटी होने लगी। वो परिवार के कंट्रोल से, खासकर पिता के, उससे बाहर निकलना चाहते थे, अपनी कला का रास्ता खुद चुनना चाहते थे। किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि उनकी जो पहली प्लास्टिक सर्जरी थी वो सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं था, वो शायद उनकी गहरी इनसिक्योरिटीज का और शायद अनजाने में ही सही अपने पिता से अलग दिखने की इच्छा का भी एक प्रतीक थी।
और फिर आया उनका सोलो करियर, ऑफ द वॉल एल्बम, और महान प्रोड्यूसर क्विंजी जोन्स के साथ उनकी पार्टनरशिप। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एल्बम ने उन्हें जैक्सन 5 के एक मेंबर से निकालकर एक मैच्योर, अपने दम पर खड़े सोलो स्टार के तौर पर स्थापित किया। संगीत तो कमाल का था, लेकिन किताब ये भी बताती है कि इसी दौर में उनका वो अकेलापन, दुनिया से कटा हुआ महसूस करना, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कामयाबी बढ़ रही थी, पर शायद वो अंदर से और अकेले होते जा रहे थे। और फिर आया वो पल, वो एल्बम जिसने न सिर्फ माइकल जैक्सन की जिंदगी बदली, बल्कि पॉप कल्चर, संगीत, मनोरंजन, सेलिब्रिटी होने के मायने ही बदल दिए। मैं बात कर रही हूँ शिखर उपलब्धियों और विरासत की, और जाहिर है थ्रिलर एल्बम की। वो सिर्फ एक एल्बम नहीं था, वो तो एक कल्चरल धमाका था।
बिल्कुल सही कहा आपने, थ्रिलर एक एल्बम से कहीं ज्यादा था। वो एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया था। बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए, उसके म्यूजिक वीडियोस, खासकर टाइटल ट्रैक वाला वीडियो। अरे वो गाने नहीं थे, वो छोटी फिल्में थीं। उन्होंने एमटीवी जैसे नए प्लेटफॉर्म का पूरा चेहरा बदल दिया, म्यूजिक वीडियो को एक आर्ट फॉर्म बना दिया। उसने नस्लीय दीवारें तोड़ी, एक ब्लैक आर्टिस्ट दुनिया के सबसे बड़े पॉप सुपरस्टार की गद्दी पर बैठा। उन्हें किंग ऑफ पॉप का खिताब मिला, और वो सिर्फ नाम नहीं था, वो हकीकत बन गया था।
लेकिन यहीं पे टेरा बोरेली एक बहुत जरूरी बात उठाते हैं, है ना, कि यही कामयाबी, ये जो शिखर था उनके लिए, एक तरह से दो धारी तलवार बन गया।
हाँ, ये उनके कलात्मक मैजिक का पीक था, सबसे ऊंचा पॉइंट। लेकिन शायद यहीं से उनके अंदरूनी मैडनेस, मतलब वो अकेलापन, वो दबाव, उसका सिलसिला भी तेज हो गया। थ्रिलर ने सक्सेस का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसे पार करना या जिसकी बराबरी भी करना लगभग नामुमकिन था। जैक्सन अब खुद अपने ही बनाए पहाड़ से मुकाबला करने लगे। ये प्रेशर सोचिए कितना ज्यादा होगा। इसके बाद के एल्बम जैसे बैड, डेंजरस, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन वो थ्रिलर वाली बात वो दोबारा नहीं हो पाई। उनकी इमेज भी बदलने लगी थी।
और इसी दौर में आया नेवरलैंड रैंच। वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो तो एक पूरी फैंटेसी दुनिया थी। उसमें अपना अम्यूजमेंट पार्क, जू, सब कुछ। किताब इसे जैक्सन की उस खोए हुए बचपन को फिर से जीने की एक बेताब कोशिश की तरह देखती है, जो बचपन उन्हें कभी मिला ही नहीं था। लेकिन इसने उन्हें बाहरी दुनिया से और भी ज्यादा काट दिया।
उनका अकेलापन बढ़ता गया, उनके बदलते लुक्स, उनकी स्किन का रंग बदलना जिसके पीछे विटिलिगो नाम की एक कंडीशन थी, और लगातार होती प्लास्टिक सर्जरियां, ये सब पब्लिक में चर्चा का और अक्सर मजाक का विषय बन गए। फिर विवाद शुरू हुए। उनकी विरासत बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो जीनियस हैं, म्यूजिक और डांस में क्रांतिकारी, नस्लीय बाधाएं तोड़ने वाले पहले ग्लोबल ब्लैक सुपरस्टार, दूसरी तरफ एक बेहद उलझी हुई, एक दुखद शख्सियत जिसकी कहानी हमें शोहरत, बचपन और इंसान होने की कीमत पर सोचने को मजबूर करती है।
अगर हम जैक्सन की जिंदगी को चलाने वाली जो अंदरूनी ताकतें थीं, उन्हें समझने की कोशिश करें जैसा टेरा बोरेली ने किया है, तो कुछ पैटर्न साफ दिखते हैं। सबसे पहली शायद थी पूर्णता की अथक खोज,
रिलेंटलेस परफेक्शनिज्म।
ये उनके काम में तो दिखता ही था, मतलब घंटों रिहर्सल, हर नोट, हर स्टेप परफेक्ट चाहिए। लेकिन ये उनकी निजी जिंदगी पर भी हावी था। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसने हमें बिली जीन या थ्रिलर जैसे मास्टरपीस दिए।
लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी, क्योंकि इसने उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं दिया, हमेशा एक बेचैनी रही। ये सिर्फ आर्ट तक नहीं था, अपने लुक्स को लेकर भी वो इसी परफेक्शन के पीछे थे।
और दूसरी बड़ी ताकत, या शायद कहें एक कमी थी, खोए हुए बचपन की तलाश,
सर्च फॉर लॉस्ट चाइल्डहुड।
इसे अक्सर पीटर पैन सिंड्रोम से जोड़ते हैं ना, वो बड़ा आदमी जो कभी बड़ा नहीं होना चाहता। नेवरलैंड रैंच बनाना, अपना ज्यादातर टाइम बच्चों के साथ बिताना, खिलौनों और गेम से घिरे रहना। किताब के हिसाब से ये सब उसी मासूमियत, उसी बेफिक्री को पाने की कोशिश थी जो उनसे बचपन में छिन गई थी। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां वो बच्चे रह सकें जो वो कभी बन ही नहीं पाए।
इसके साथ ही जुड़ा था प्यार और स्वीकृति की गहरी जरूरत,
डेस्परेट नीड फॉर लव एक्सेप्टेंस। किताब बताती है कि बचपन में खासकर पिता से उन्हें जो इमोशनल सपोर्ट और प्यार नहीं मिला, उसकी कमी वो जिंदगी भर महसूस करते रहे। वो लगातार बाहरी दुनिया से वैलिडेशन, स्नेह चाहते थे, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो इसे खरीदने की कोशिश कर रहे हों, महंगे तोहफों से अपने आसपास जी हुजूरी करने वालों की भीड़ रखकर, या फिर अपने फैंस के जरिए उस प्यार को महसूस करके जो उन्हें शायद पर्सनल रिश्तों में नहीं मिल पा रहा था। ये शोहरत वाला पहलू भी बड़ा अजीब है, प्रसिद्धि का विरोधाभास। जरा सोचिए, एक इंसान जो दुनिया का सबसे जाना पहचाना चेहरा है, जिसे सड़क पर कोई देख ले तो भीड़ लग जाए, वही इंसान अंदर से चाहता है कि वो गायब हो जाए, किसी को दिखे ही नहीं। टेरेपेली बताते हैं कि फेम ने उन्हें एक तरह से पिंजरे में बंद कर दिया था। उन्हें लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत होती थी, ये समझने में कि कौन सच में दोस्त है और कौन सिर्फ उनकी शोहरत का फायदा उठाना चाहता है। वो बहुत मशहूर थे और उतने ही अकेले भी।
एक और इंटरेस्टिंग चीज है, दर्द को कला में बदलना, चैनलिंग पेन इनटू आर्ट। उनके कई गाने जैसे चाइल्डहुड, स्ट्रेंजर इन मॉस्को या स्क्रीम, वो सीधे सीधे उनके अंदर के दर्द, अकेलेपन, गुस्से और इनसिक्योरिटी से निकले हुए लगते हैं। शायद इसीलिए उनकी कला इतनी पावरफुल थी, क्योंकि उसमें एक सच्ची, गहरी, अक्सर दुख भरी फीलिंग होती थी जिसे दुनिया भर के लोगों ने महसूस किया। उन्होंने अपने जख्मों को संगीत बना दिया।
बदलते लुक से जुड़ा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अपनी नस्लीय पहचान के साथ उनका रिश्ता, वो कॉम्प्लिकेटेड था। शारीरिक बदलावों के पीछे सिर्फ कॉस्मेटिक वजहें नहीं थीं, शायद आत्मस्वीकार पाने की छटपटाहट थी, सामाजिक दबाव थे, और शायद जैसा किताब इशारा करती है, उस चेहरे से छुटकारा पाने की कोशिश भी थी जो उन्हें उनके सख्त पिता की याद दिलाता था। ये आइडेंटिटी का एक गहरा संकट था। जैक्सन की जिंदगी में देखिए बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन टैरा बोरेली की किताब तीन ऐसे खास मोड़ों की बात करती है जिन्होंने उनकी कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। पहला बड़ा मोड़ था थ्रिलर की वो जबरदस्त, दुनिया हिला देने वाली कामयाबी 1982-84।
हाँ, ये वो मोमेंट था जब जैक्सन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं रहे, वो एक ग्लोबल आइकॉन, एक कल्चरल सिंबल बन गए। एल्बम ने सेल्स की जो रिकॉर्ड बनाए वो तो आज भी टिके हुए हैं। इसने उन्हें फेम की उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जहां पहले कोई नहीं गया था। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव बदलाव नहीं था, ये इतना ट्रांसफॉर्मेटिव इसलिए था क्योंकि इसने उन्हें बेमिसाल शोहरत तो दी, लेकिन साथ ही एक ऐसा प्रेशर भी बना दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। किंग ऑफ पॉप का ताज, वो भारी पड़ गया। इसने उनके अकेलेपन को और बढ़ाया, उन्हें आम जिंदगी से और दूर कर दिया। ये उनके मैजिक का पीक था, पर शायद यहीं से उनके अंदरूनी संघर्ष, उनके मैडनेस की शुरुआत भी हुई।
दूसरा अहम और काफी दुखद मोड़ आया 1993 में, जब उन पर पहली बार बाल शोषण के आरोप लगे और मामला कोर्ट के बाहर सेटल हो गया। जॉर्डन चैंडलर नाम के एक लड़के के परिवार ने ये इल्जाम लगाए थे। मीडिया में हंगामा मच गया, पुलिस जांच हुई। आखिरकार जैक्सन ने अपने वकीलों की सलाह पर बिना कोई गलती माने मामले को कोर्ट के बाहर एक मोटी रकम देकर निपटाने का फैसला किया।
इसे बदलकर शक के दायरे में आ गए। किताब बताती है कि इस घटना ने उन्हें इमोशनली और फिजिकली तोड़ दिया। उनकी पेन किलर्स पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। दुनिया उन्हें जिस नजर से देखती थी वो हमेशा के लिए बदल गया। वो समझौता शायद लंबी कानूनी लड़ाई से बचने के लिए था, लेकिन उनकी इज्जत को जो धक्का लगा उसकी भरपाई कभी नहीं हुई।
और तीसरा, शायद सबसे ज्यादा तबाही लाने वाला मोड़ था 2005 का मुकदमा और उसमें सभी आरोपों से बरी होना। इस बार गैविन आरविजो नाम के एक और लड़के के परिवार ने वैसे ही आरोप लगाए। इस बार मामला कोर्ट तक गया, एक लंबा, बहुत पब्लिक और सेंसेशनल ट्रायल चला। महीनों की सुनवाई के बाद जूरी ने जैक्सन को सारे चार्जेस से बरी कर दिया।
कानूनी जीत तो हुई, लेकिन ये उनके लिए एक तरह की हार ही थी। पब्लिक ओपिनियन में मुकदमे के दौरान जो बातें सामने आई, उन्होंने उनकी इमेज को और ज्यादा डैमेज किया था। टैरा बोरेली के मुताबिक इस ट्रायल ने उनकी बची खुची हिम्मत और दुनिया पर जो थोड़ा बहुत भरोसा था उसे भी खत्म कर दिया। इसने उनके इस डर को और पक्का कर दिया कि दुनिया उन्हें कभी नहीं समझेगी, हमेशा शक से ही देखेगी। बरी होने के बाद वो अमेरिका छोड़कर चले गए और लगभग पूरी तरह से दुनिया से कट गए। ये उनकी जिंदगी का वो पॉइंट था जहां से उनका जो आखिरी दौर का पतन था वो लगभग तय हो गया। वापसी के रास्ते बंद होते गए। माइकल जैक्सन की कहानी ये सिर्फ एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सेलिब्रिटी की कहानी नहीं है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हमें इंसान होने के बारे में, हमारी अपनी जिंदगियों के बारे में कई गहरे सबक सिखाती है। सबसे पहला और शायद सबसे हिला देने वाला सबक है बचपन के ट्रॉमा का स्थायी असर। ये कहानी दिखाती है कि बचपन में मिला दुर्व्यवहार, इमोशनल निग्लेक्ट या बहुत ज्यादा प्रेशर किसी इंसान की पूरी अडल्ट लाइफ को कैसे शेप दे सकता है, चाहे वो बाहर से कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए। वो जख्म शायद कभी पूरी तरह भरते नहीं हैं, बस अपना रूप बदल लेते हैं। और जिंदगी भर पीछा करते हैं।
दूसरा सबक जुड़ा है प्रसिद्धि की कीमत से। हम अक्सर फेम के पीछे भागते हैं, ग्लैमर अच्छा लगता है, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि हद से ज्यादा शोहरत कितनी डरावनी हो सकती है। ये इंसान को उसकी पहचान से, उसकी प्राइवेसी से और कई बार तो असलियत से ही काट सकती है। जैक्सन दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में थे, लेकिन शायद सबसे अकेले इंसानों में भी। उनकी कहानी पूछती है, क्या शोहरत की ये कीमत वाकई चुकाने लायक है?
तीसरा सबक है पूर्णतावाद के खतरे के बारे में। अपने काम में बेस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन जब ये जुनूनम बन जाए, जब आप कभी भी खुद से खुश ना हो, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैक्सन का परफेक्शनिज्म उन्हें म्यूजिक के टॉप पर ले गया, लेकिन शायद इसी ने उनकी पर्सनल शांति को भी छीन लिया। ये हमें सिखाता है कि गुड इनफ होना भी ठीक है, हमेशा परफेक्ट होने के चक्कर में खुद को तबाह कर लेना वो समझदारी नहीं है।
का सबक ये भी बहुत जरूरी है। हम सब अपनी आइडेंटिटी से जूझते हैं, हम कौन हैं, समाज हमें कैसे देखता है, हम खुद को कैसे देखते हैं। जैक्सन का अपनी बॉडी, अपनी रेस, अपनी इमेज के साथ जो स्ट्रगल था, वो इस कॉम्प्लेक्सिटी का एक एक्सट्रीम उदाहरण है। ये दिखाता है कि सेल्फ इमेज और बाहरी उम्मीदों के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो सकता है।
मीडिया की भूमिका पर भी ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। मीडिया ने जैक्सन को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया, उन्हें किंग ऑफ पॉप बनाया, लेकिन फिर खासकर जब विवाद हुए, मीडिया ने ही उनकी इमेज को गिराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दिखाता है कि मीडिया कैसे किसी को हीरो और विलन दोनों बना सकता है, और अक्सर सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं होती है।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और ये कहानी मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को भी बहुत जोर से अंडरलाइन करती है। जैक्सन के कई बर्ताव, जिन्हें अक्सर अजीब या सनकी कहकर लोग टाल देते थे, वो शायद गहरे मानसिक और भावनात्मक संघर्षों के लक्षण थे। ये हमें याद दिलाता है कि मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ, और मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए।
आखिर में शायद सबसे बड़ा सबक है आसान फैसलों से परे देखना। जैक्सन की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानों को, खासकर उन लोगों को जिनकी जिंदगियां इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कॉम्प्लेक्स रही हों, उन्हें सिर्फ अच्छा या बुरा, निर्दोष या दोषी के खांचे में फिट करना आसान तो है, पर सही नहीं है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई, ताकत और कमजोरी, टैलेंट और दर्द, सबका मिक्सचर होता है। हमें ऊपर ऊपर के जजमेंट से बचकर सहानुभूति और गहरी समझ बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
तो जे रैंडी टैराबोली की इस गहरी पड़ताल और हमारी इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हो, तीन टेकअवेज, तो वो क्या होंगे? मेरे लिए पहला है एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि कि बेमिसाल टैलेंट, बेशुमार दौलत और दुनिया भर की शोहरत भी बचपन के गहरे इमोशनल जख्मों को भर नहीं सकती और न ही सच्ची खुशी की गारंटी दे सकती। असली सुकून और मन की शांति शायद सच्चे इंसानी रिश्तों से, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने से और खुद को जैसे हैं वैसे अपनाने से ही मिलती है, बाहरी कामयाबियों से नहीं।
दूसरी है एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि कि आर्टिस्टिक टैलेंट और पर्सनल दर्द के बीच अक्सर एक गहरा, उलझा हुआ और कभी कभी खतरनाक रिश्ता होता है। दर्द क्रिएटिविटी को फ्यूल दे सकता है, जैसा हमने जैक्सन के संगीत में देखा, लेकिन अगर उसे सही तरीके से समझा और संभाला न जाए तो वही दर्द इंसान को जला भी सकता है। यह टैलेंट, ट्रॉमा और फेम के बीच का एक बहुत नाजुक बैलेंस है जो अक्सर बिगड़ जाता है।
और तीसरा एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो हम सबके लिए है। ये कहानी हमें बहुत जोर से याद दिलाती है कि बचपन की मासूमियत और उसकी सुरक्षा कितनी जरूरी है, और शुरुआती जिंदगी में मिले बुरे बर्ताव या इमोशनल नेग्लेक्ट के नतीजे कितने भयानक और लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। साथ ही यह हमें सिखाती है कि कॉम्प्लेक्स इंसानों के प्रति, जिनकी पूरी कहानी हम कभी नहीं जान सकते, थोड़ी हमदर्दी रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न सुनाएं। माइकल जैक्सन की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की और शोहरत के प्रति हमारे अपने जुनून की भी कहानी है।
संगीत, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।
संगीत समाप्त।